9 दिसंबर रविवार। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा।
आज भी हम चाहते हैं कि सर्व की सम्मति से बने, प्रेम से बने, भाईचारा से बने और विश्वास से बने, वरना मंदिर बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं।
बीजेपी और आरएसएस की क्या है रणनीति?
ये बिल्कुल कैलकुलेटेड है, क्योंकि कोर्ट के सामने ये मामला है, हियरिंग जनवरी में होने वाला है।
खास मुलाकात जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ।
आपने जम्मू कश्मीर को पिंजरे में बंद करके रखा है, इसको हवा दीजिए, इसको निकलने दीजिए, इसके रास्ते खोल दीजिए। और दोनों कश्मीरों को हम बॉर्डर तो नहीं बदल सकते, बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकते, पर बाउंड्रीज को खत्म तो कर सकते हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। विश्व हिंदू परिषद ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाए जाने की मांग को लेकर एक रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में साधु संत और आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी भी शामिल हुए। संत चाहते हैं कि ये विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फ्रांस के विदेश मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वह फ्रांस की राजनीति में दखल न दें। जियां इव लीदरियां ने स्थानीय मीडिया से कहा कि फ्रांस अमरीका की घरेलू राजनीति में दखल नहीं देता और अमरीका से भी ऐसी ही उम्मीद की जाती है। शनिवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फ्रांस में हो रही हिंसा के पीछे जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते के प्रति नाराजगी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि लोग पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं देना चाहते। ट्रंप ने ये बात ईंधन पर लगाए गए उन करों को लेकर कही जिनके विरोध में फ्रांस में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में लड़ रहे गठबंधन की मदद रोके जाने के पक्ष में नहीं है। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी टिमथी लेडरकिंग ने कहा कि अगर अमरीका इस गठबंधन से पीछे हटता है तो गलत संदेश जाएगा, क्योंकि यहां पर अमरीका का सहयोगी सऊदी अरब ईरान के खिलाफ डटा हुआ है। लेडरकिंग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की पहल पर स्वीडन में शांति वार्ता करवाना इस देश में लाखों लोगों को भूखमरी की कगार पर ला देने वाले संघर्ष को खत्म करने की दिशा में अहम कदम है। अबू धाबी में एक सम्मेलन में लेडरकिंग ने कहा,
Obviously there are pressures in our own system, as you can see in the United States.
जाहिर है हमारे ऊपर भी दबाव है कि इस गठबंधन से या तो हट जाएं या फिर इन्हें सहायता देना बंद कर दें। लेकिन हम प्रशासनिक पहलू से इस तरह के किसी भी कदम के खिलाफ हैं। हमें लगता है कि इस गठबंधन की सहायता करना जरूरी है। अगर हम मदद रोकते हैं तो इससे गलत संदेश जाएगा। ये थे अमरीकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी टिमथी लेडरकिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आर्मेनिया में आज मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने समय से पहले चुनाव करवाए हैं। इस साल की शुरुआत में शांतिपूर्ण क्रांति के बाद सत्ता में आने के बाद वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। मौजूदा संसद में अभी भी पहले सत्ता में रही रिपब्लिकन पार्टी का प्रभुत्व है। पाशिन्यान का गठबंधन बहुमत हासिल करना चाहता है ताकि उन्होंने आर्मेनिया में जिन राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को लाने का वादा किया था उन्हें वो मूर्त रूप दे सकें। वोट देने के बाद नरीन हारुत्यना नाम की एक महिला ने कहा, मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे आशा है कि मेरा वोट आर्मेनिया के लोगों की आंखों में खुशी की चमक के रूप में ढल पाएगा। चाहती हूं कि मेरा वोट आर्मेनिया के हर शख्स के जीवन में खुशी लाए। उम्मीद है कि मेरे वोट की भूमिका अहम होगी। ये थे आर्मेनियाई महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मंत्री स्टीव बार्कले ने दोहराया है कि संसद में मंगलवार को सरकार के ब्रेग्जिट समझौते पर मतदान होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि संसद में सरकार की ब्रेग्जिट डील पारित नहीं हो पाएगी। बार्कले ने कहा कि बार्कले ने बीबीसी से कहा कि इस समझौते के माध्यम से ही 2016 में ब्रितानी मतदाताओं द्वारा किए गए यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के फैसले पर अमल किया जा सकता है। इस बीच लंदन में आज ब्रेग्जिट समर्थक और विरोधी दोनों ही प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्व ब्रितानी विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन ने समझौते को लेकर सही से मोलभाव नहीं किया है। ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह की पूर्व संध्या पर दो विजेताओं ने पूरी दुनिया से महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध कदम उठाने की अपील की है। इराक में बलात्कार का सामना करने वाली यजीदी महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाली नादिया मुराद ने कहा कि इस्लामिक स्टेट के एक भी हमलावर पर मुकदमा नहीं चला है और उस संगठन ने बलात्कारों का लालच देकर नए लड़ाके भर्ती किए हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है। आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव आज आपके साथ मैं संदीप सोनी। दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद ने आज धर्म सभा का आयोजन किया। 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। मंच से कहा गया कि भगवान राम के भक्त अयोध्या में भव्य राम मंदिर चाहते हैं। अदालत को लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। रामलीला मैदान से आंखों देखी सुनिए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की जुबानी।
प्राणों से प्यारा है अवधपुरी का धाम, बनाएंगे मंदिर बनाएंगे।
दुंदुभी बजाती महिला, हाथों में ध्वज पताका लिए युवक और राम के गीत गा रहे नौजवान, सब हिस्सा थे उस रैली का जो रविवार को विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की थी। अयोध्या धर्म सभा में जमा हुई कम तादाद से सचेत संघ परिवार से जुड़े संगठन ने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नतीजा, तुर्कमान गेट से राजघाट को जाने वाली सड़क पर घंटे आध घंटे तक बस रैली में शामिल होने के लिए आने वालों की कतार ही नजर आई। विशाल स्टेज जिस पर कम से कम 2 दर्जन हिंदू साधु संत बैठे थे, मैदान के चारों कोनों पर पुलिस के मचान और जगह जगह लगे विशालकाय टीवी स्क्रीन, जिस पर बारी बारी से मंच पर भाषण दे रहे वक्ता और भीड़ को देखा जा सकता था। अलग अलग साधु संतों के भाषणों के बाद बारी आई आरएसएस में नंबर 2 के पद पर बैठे भैया जी जोशी के बोलने की।
लोकतंत्र में संसद का भी अपना एक अधिकार है, संसद का दायित्व तो भी है, और इसलिए यहाँ के पूज्य संतों के द्वारा जो व्यक्त किया गया, करोड़ों राम भक्त जो चाहते हैं, उस कानून बनाने की दिशा में वर्तमान सरकार ने पहल करनी चाहिए।
भैया जी जोशी, जिनका असली नाम सुरेश जोशी है, उन्होंने सरकार में बैठे लोगों को उनके वादे की याद दिलाई।
अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा, राम जन्मभूमि पर बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे की घोषणा इन सब लोगों ने की है जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका भी संकल्प है। मैं समझता हूँ कि यह संकल्प पूर्ति का अवसर अब आ गया है।
जय श्री राम और मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों के बीच कई साधु संतों ने कहा, अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए कानून संसद के इसी सत्र में लाया जाना चाहिए। लोगों की भी राय इस बात को लेकर साफ दिखी।
आज भी हम चाहते हैं कि सर्व की सम्मति से बने, प्रेम से बने, भाईचारा से बने और विश्वास से बने, वरना मंदिर बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं।
लगभग 10-15 बार तो हम लोग आए हैं आंदोलन में, और आगे भी अगर अभी इस इतने बड़े जुलूस के बावजूद भी अगर मंदिर निर्माण में कोई बाधा आती है तो ये आगे चलता रहेगा, और कभी ना कभी तो बना के हम लोग छोड़ेंगे मंदिर।
ये सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, उसके लिए है, क्यों नहीं है प्रायोरिटी में?
अक्टूबर में जब राम मंदिर का टाइटल सूट सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उसने उसकी तारीख जनवरी तक के लिए टाल दी थी। पिछले दिनों एक चुनावी सभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के एक राज्यसभा के सदस्य सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में देरी की वजह बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी का इशारा कपिल सिब्बल की तरफ था, जिन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला मई 2019 तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर के मामले को राजनीतिक तौर पर भुनाना चाहती है। इधर रामलीला मैदान में भैया जी जोशी के भाषण के बाद बोलने आए एक संत ने कह दिया कि मोदी जी ने हमसे वादा किया था कि वो राम मंदिर बनवाएंगे, चूंकि वो ऐसा नहीं कर पाए हैं तो हम कहना चाहते हैं कि हम मोदी जी को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मंदिर निर्माण का काम पूरा नहीं हो जाता। पास ही खड़े दीपक कुमार राजपूत से मैंने पूछा कि वो संत के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, तो उनका और उनके साथियों का कहना था,
मंदिर भी बनेगा और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी बनेंगे।
70 साल से कोई नहीं बना पाया, अब 4.5 साल हुई हैं उनको पूरी, अभी उनको 5 साल भी नहीं हुई हैं, तब तक राम मंदिर उनके लिए एक।
आपको भी लगता है कि मोदी साहब को 70 साल दिया जाना चाहिए मंदिर?
नहीं, 70 साल नहीं, कम से कम 10 साल तो दो।
फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद की ये रैली कितनी कारगर साबित होगी और संसद के भीतर इसका क्या कोई असर भी नजर आएगा, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी के सामने मैंने यही सवाल रखा।
आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने फिर मजबूती से मंदिर के मुद्दे को उठाया है पिछले 2-3 सप्ताहों में, और जो आज धर्म सभा हुई है वो चौथी मीटिंग है। 3 पहले हो चुकी हैं, रैलीज कर चुके हैं लोग। पहली बार जब विश्व हिंदू परिषद ने ये मुद्दा उठाया था 1984, 34 साल पहले, और 29 साल पहले बीजेपी ने इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी और पालमपुर के सेशन में एक रेजोल्यूशन में इसको शामिल किया था। और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त हुए 24 साल हो गए। इस दौरान दो बीजेपी की सरकारें जिन्होंने राज किया 11 साल तक, नरेंद्र मोदी और पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने, पर मंदिर अभी तक नहीं बना। तो कई लोगों का ये मानना है कि मंदिर सिर्फ चुनावों से पहले उठाया जाता है मुद्दा लोगों को लुभाने के लिए, पर एक्चुअली एक्शन नहीं हुआ है। इससे कई लोग बहुत निराश भी हो गए हैं। अब चुनाव आ रहे हैं 2019 में, मंदिर फिर से सुर्खियों में आ गया है और अगुवाई आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कर रहे हैं, हालांकि भाजपा इस पे शांत है।
जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और तमाम दूसरे संगठन जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं वो खुलकर राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, उतनी उग्रता से भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे खुलकर वैसा नहीं कह रही है। रामलीला के मैदान में मंच पर भारतीय जनता पार्टी का वैसा कोई नेता नहीं था। ये जो दूरी है ये एक सोची समझी दूरी नजर आती है।
ये बिल्कुल कैलकुलेटेड है क्योंकि कोर्ट के सामने ये मामला है, हियरिंग जनवरी में होने वाला है। सरकार का स्टैंड है कि हम कोर्ट का वेट करेंगे और अपने जो पार्टनर्स हैं उनको भी हो सकता है अगर क्लियर स्टैंड इस समय लेगी तो नाराज कर दे। शिवसेना तो साथ जाएगी, पर जनता दल यू है, अकाली दल है, रामविलास पासवान है, कई पार्टीज हैं, क्या उसका समर्थन करेंगी कि एक संसद के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा ये चीज की जाए। पर इन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि अब कोर्ट का इंतजार ना करके सरकार, भाजपा की सरकार एक कानून पास करके इस मंदिर का निर्माण करवाए।
जिस दिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसी दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, और आपको लगता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो भी नतीजे होंगे वो कुछ अहम रोल अदा कर पाएंगे, निर्णायक साबित हो सकते हैं किसी तरह से इस मुद्दे को लेकर?
एक लगता है भाजपा की स्ट्रेटजी है कि मनोज सिन्हा जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने इसकी तरफ इशारा कर ही दिया है कि वो प्राइवेट मेंबर्स बिल लाएंगे मंदिर बनाने के लिए, और हो सकता है कि सरकार कहे आप विड्रॉ कर लो, हम इस पे बिल लाएंगे, और वो बिल चुनावों से पहले आए अगले सेशन में, जो कि बहुत छोटा सेशन होगा, वोट ऑन अकाउंट होगा, और फिर सब पार्टीज के सामने एक धर्म संकट होगा इसको सपोर्ट करें कि नहीं, खासकर कांग्रेस के सामने जो अपने आप को हिंदुओं का समर्थक दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा होगा। जहां तक चुनावों के रिजल्ट्स का सवाल है, मान लीजिए कि हिंदी हार्टलैंड के जो 3 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसमें से बीजेपी 2 हार जाती है, मान लीजिए जैसे कई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि तीनों भी हार सकती है क्योंकि बहुत उग्र मुद्दे सामने आए इन चुनावों के दौरान, किसानों का मुद्दा, नौकरियों का सवाल, दलितों की नाराजगी, अल्पसंख्यकों की नाराजगी, तो कहीं ना कहीं वो जो जादू था भाजपा का 2014 का वो कम होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी के सामने भी बहुत ही चुनौतियां हैं, तो फिर ये भी संभव है कि भाजपा अपने पुराने ट्राइड और टेस्टेड मेथड्स की ओर और झुके और मंदिर उनमें से एक होगा कि किसी न किसी तरह हिंदुओं को एकजुट किया जाए, और कई पत्ते खेलेगी, एक ही पत्ता वो नहीं होने वाला है और मंदिर उनमें से एक अहम पत्ता होने वाला
ये,
है।
ये बताइए नीरजा जी कि इस पूरे घटनाक्रम में राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दुविधा क्या देखती है आप?
मैं कह रही हूँ ऐसा होने वाला ये नहीं, अगर कोर्ट कह दे कि मंदिर वहीं बना दीजिए तो मंदिर एज चुनावी मुद्दा खत्म हो जाएगा। एक और चीज है, यहाँ जो अपर कास्ट है ना, अपर कास्ट कई स्टेट्स में बीजेपी से अलग हो रहा है, कई चीजों को लेकर नाराजगी है, उनको लगता है आरक्षण के प्रति जो कि रुझान दिखाया है भाजपा सरकार ने या SC/ST अट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट लाए हैं अंडू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, तो उन चीजों से इनमें एक गुस्सा आया है। लेकिन उनके सामने भी अगर आप मंदिर का मुद्दा रखेंगे तो उनकी हिंदू आइडेंटिटी पे आप कह रहे हैं कि उसको आप फोकस में ला रहे हैं, ताकि आप हमसे नाराज भी हैं लेकिन हम मंदिर बना रहे हैं, आप हिंदू हैं तो रो पीट के आप हमारे साथ ही रहिए, ये भी एक फैक्टर हो सकता है इनकी रणनीति का।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीते सोमवार को हुई हिंसा के सिलसिले में सेना के जवान जितेंद्र मलिक को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने लखनऊ में हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र से अब से कुछ देर पहले बात की।
संदीप, ये आज पूरे मामले में जो बुलंदशहर की घटना है उसमें ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, जितेंद्र मलिक की गिरफ्तारी। और जितेंद्र मलिक को आज कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसटीएफ ने उनसे पूछताछ की है, हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कुछ ये नहीं बताया गया कि जितेंद्र मलिक से उनको क्या जानकारी मिली है, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि उस घटना में उस दिन जितेंद्र मलिक ने शायद उसमें शामिल होने की बात स्वीकार की है। और दूसरे इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है कि देर रात लगभग 1-2 बजे के करीब इनको सेना के अधिकारी खुद लेकर के जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आए और उन्होंने एसटीएफ को हैंडओवर किया। कार्रवाई तेज होनी चाहिए, उसकी दिशा में भी एक कदम माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी एक जो बना हुआ है, जिसको मुख्य अभियुक्त के तौर पर देखा जा रहा है योगेश राज, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और इसको लेकर के इस पूरी कार्रवाई पर, पूरी कार्यप्रणाली पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सब के अलावा कल गए थे हम शाम को और रात में काफी देर तक वहां रहे, उनके परिवार के एटा में जो सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर जो मारे गए थे इस घटना में, उनके परिवार वालों से जो हमने बात की थी, परिवार वालों ने तो उतना ज्यादा इसको मुखर होकर के ये शिकायत नहीं की, लेकिन गाँव में तमाम लोगों से बात हुई, उनके घर परिवार में और लोगों से बात हुई। उनका ये कहना था कि इसमें जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के बावजूद जो तमाम तरह के वीडियो जारी किए जा रहे हैं, पुलिस की जो गतिविधि थी, पुलिस की कार्यप्रणाली थी, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर के वो बड़े व्यथित थे, उन लोगों के अंदर गुस्सा भी था। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सरकार ने कार्रवाई करते हुए बुलंदशहर के एसपी को वहां से हटा दिया, स्याना जिस थाने की ये घटना थी वहां के एसएचओ को हटा दिया, एक एडिशनल एसपी का भी ट्रांसफर किया। तो कुल मिलाकर के सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है और ये माना जा रहा है कि जो लोग इसमें जिन पर भी जरा भी संदेह था उनको सजा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो कामयाबी पुलिस को मिलनी चाहिए और जिससे ये पता लगेगा कि कार्रवाई वास्तव में तेज हुई है, वो है योगेश राज की गिरफ्तारी।
लखनऊ से ये थे हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र। और अब एक खास मुलाकात पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ। उनसे बात कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
अब जो असेंबली भंग कर दी गई है आपकी रियासत में, 6 महीने के अंदर तो असेंबली के चुनाव होने चाहिए, जब चुनाव होंगे विधानसभा के तो आप तन्हा लड़ेंगे।
नेचुरली हर एक पार्टी का अपना एजेंडा है, कांग्रेस का अपना एजेंडा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है, हमारा अपना एक एजेंडा है, हमारा एक डिक्लेरेशन है जिसमें हम जम्मू कश्मीर को समझते हैं कि इट हैज़ टू बिकम अ ब्रिज, एक पुल बनना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान का हम रोल समझते हैं जम्मू कश्मीर के रेजोल्यूशन में, और भी हमारे एजेंडे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबको सूट नहीं करती, तो इसलिए हम अपने एजेंडे के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये जो इनका गेट टुगेदर हुआ था कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का, वो एक अपॉर्चुनिस्टिक मोमेंट था और जब ये खत्म हो गया तो ये लोग बिखर गए फिर से।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 35A सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड करने के लिए हम इकट्ठे हो गए थे, और भी कई ऐसे मामलात हो रहे थे, रोज़ बर रोज़ कुछ ऐसे कानून लाए जा रहे थे, ऐसी अमेंडमेंट्स की जा रही थी जिससे हम तमाम पार्टीज़ को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी पोजिशन जो है उसको, स्पेशल पोजिशन को डायल्यूट किया जा रहा है, और उसके अलावा लग रहा था कि कोई तोड़ फोड़ हो रही है।
पोलिटिकल वैक्यूम अब हो चुका है आपकी रियासत में, और जब जब पॉलिटिकल वैक्यूम रहा है हिंसा बढ़ी है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि रोज़ दक्षिण कश्मीर में हिंसा जारी है, तो ये जब एक पॉलिटिकल वैक्यूम है तो आपको लगता है कि हिंसा की वारदातें बढ़ेंगी?
देखिए ये जो सिचुएशन है इसको बहुत ख़राब है, अच्छी नहीं है, लोग रोज़ मर रहे हैं, जो मासूम सिविलियंस शहरी लोग मर रहे हैं, लड़के छोटे छोटे बंदूक उठाते हैं, अभी बंदूक हाथ में पकड़नी नहीं आती तो मारे जाते हैं, पुलिस के आदमी, सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सन, बहुत मारधाड़ मची हुई है जिसकी वजह से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा अबतर हो रही है, कारोबार ठप हो रहा है, एजुकेशन मुतासिर हो रहा है, ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर हो रहा है। तो ऐसे में इलेक्टेड गवर्नमेंट जैसी भी होती है, کم سے کم لوگوں کی ایک سنوائی ہوتی ہے, تو اس میں گورنر رول میں اس قسم کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. پچھلے دو چار مہینے میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ جو ہے مارداڑ ہو رہی ہے, زیادہ لوگ مر رہے ہیں.
یہ جو ہنسا کی وارداتیں بڑھی ہیں, آپ جب اس وقت مکھیہ منتری تھیں تب بھی ہو رہا تھا, لوگ ناراض تھے آپ سے بھی, تو اس وقت آپ جو آپریشن آل آؤٹ ہوا, آپ کی بلیسنگ ہوگی نا اس وقت, تو آپ روکنے میں
دیکھیے یہ جو لوگوں کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ ہے, جو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا بی جے پی کے سے جانے کا, وہ مفتی صاحب کا ایک دور اندیشی تھی. وہ ایک لارجر انٹرسٹ کو سوچتے ہوئے کہ جیسے واجپئی جی کے ٹائم میں پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے تھے, بات چیت ہوئی تھی, سپریٹس کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی, راستے کھولنے کی بات ہوئی تھی, مظفر آباد کھولنے کی بات ہوئی تھی, پر لوگ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت غصہ تھا کہ یہ
اس کو آپ سویکار کرتی ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا, اس کی وجہ سے لوگوں میں ناراضگی بڑھی.
بالکل, لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ایک کوئی ایسا لیڈر ہو سکتا ہے جو سب کچھ داؤ پہ لگا سکتا ہے, اپنی عزت, اپنی پارٹی, اپنی جماعت, صرف اس لیے کہ وہ چاہتا ہے جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے باہر نکالے. اور خون خرابے سے باہر نکالنے کے لیے دلی میں جو مودی جی کی سرکار کو ایک بہت بڑی بہمت ملی تھی, بہت بڑی میجورٹی ملی تھی کہ وہ شاید واجپئی کی طرح استعمال کریں گے اپنے طاقت.
اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سمجھ نہیں سکے کہ بجائے لوگوں کو آپ سمجھا نہیں سکے.
نہیں, کچھ بھی کہیے, ہو سکتا ہے ہم سمجھا نہیں پائے, ہو سکتا ہے لوگ سمجھ نہیں سکے, مگر نہ وہ سمجھے اور نہ بی جے پی کی یہاں کی لیڈرشپ سمجھی اس بات کو کہ مفتی صاحب نے اتنا بڑا جو فیصلہ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے, کس لیے کیا ہے. ادروائز سرکار تو ہم کانگریس کے ساتھ مل کے بھی بنا سکتے تھے, جیسے کہ ابھی ہو رہا تھا.
جب آپ تین سال ساڑھے تین سال ستہ میں رہیں تو میں آپ کو دیکھتا تھا, آپ کے چہرے پر شکن ہوتی تھی, ٹینشن ہوتی تھی
بہت زیادہ.
تو کیسا پارٹنر تھا بی جے پی آپ کے؟
نہیں, بی جے پی کا پارٹنر کی بات نہیں ہے, جو ہماری آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہے. ہمارا گول جو تھا وہ ایجنڈا آف الائنس میں بالکل صاف ستھرا تھا, جس میں ہم نے پی ڈی پی کا جو ایجنڈا تھا اس میں لفظ بلفظ تھا کہ آپ کو پاکستان سے دوستی کرنی ہے, آپ کو ایسپا کو آگے چل کے ریووک کرنا ہے, آپ کو اور راستے کھولنے ہیں, نوشہرا جنگڑ کھولنا ہے, کرگل اسکردو کھولنا ہے, جموں سیالکوٹ کھولنا ہے, اور جو ہمارے پاور پروجیکٹ ہے وہ ٹرانسفر ہمیں واپس کر دینے ہیں, آپ کو پاکستان سے ڈائیلاگ کرنا ہے, جموں کشمیر میں ڈائیلاگ کرنا ہے. تو جب میں بار بار یہ بات کہتی تھی کہ پاکستان سے بات چیت کرنا ضروری ہے, میں نے سیز فائر کی بات کی, ہم نے کوئی 12,000 نوجوان بچوں کے خلاف ایف آئی آر واپس لیے, تو اس سے ہمارے تضاد ہوتے تھے آپس میں. اور اس کے بعد رسانہ کا انفارچونیٹ کیس ہوا جس میں ایک بچی کے ساتھ گڑبڑ ہوگی, بہت برا کیس تھا وہ, اس کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی, تو اس کے بعد اور بھی ہمارے تعلقات خراب ہوتے گئے.
اگر بی جے پی کا پکش دیکھیں تو ان کا یہ کہنا تھا جب انہوں نے آپ کی حکومت سے وڈرا کیا تو انہوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا کہ یہ جو بھاگیداری ہے چلنے والی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے خلاف ان کا الزام ہے کہ آپ نے بہت ٹانگ اڑائی, بہت جگہ پہ نہیں, بہت ساری چیزیں نہیں ہونے دی, جو آپریشن آل آؤٹ تھا اس میں بھی آپ اپوز کر رہی تھیں, تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ وہ آئے تھے اچھی نیت سے لیکن آپ کی نیت صاف نہیں تھی, آپ پرو پاکستان ایلیمنٹ کو شہ دیتی تھی, اس طرح کے الزامات لگائے.
دیکھیے, جو ہمارا ایجنڈا آف الائنس ہے جس پہ بی جے پی نے پوری اپنی حامی بری تھی, اس میں تو بالکل صاف ہے پاکستان سے بات کرنی ہے کرنی ہے, یہی بات میں بار بار دہراتی تھی. حریت والوں سے بات کرنی ہے کرنی ہے میں بات دہراتی تھی کہ آپ کو جو ہے اور راستے کھولنے ہیں, آپ کو جو ہے یہ جو ہمارے پاور پروجیکٹ ہے وہ واپس کرنے ہیں. اور رسانہ کیس میں میں نے ایک سٹینڈ لے لیا کہ سی بی آئی کو ہم نہیں دیں گے, اس کو نہیں دیا. جو اب ہماری اپنی پولیس نے بہت اچھا کام کیا اس میں کرائم برانچ نے. اسی طرح پتھر بازوں کو آپ نے معافی دے دی, کیوں دے دی, وہ پھر پتھر مارتے ہیں. بھائی معافی جب ایک بار دے دی کوئی کچھ لڑکوں کو 10,000 یا 12,000, ان کا سارا کیریئر تباہ ہو رہا تھا. تو ان سب تو یہ تو مجھے تو خوشی ہے کہ ہم نے اپنا ایجنڈا چلایا, ہم نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا, کہیں سمجھوتا نہیں کیا بی جے پی کے ساتھ.
آپ کے کئی گولز میں سے ایک تھا کہ پاکستان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ پھر سے لایا جائے, دوبارہ پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے, یہ نہیں ہو سکا, اسے آپ اپنی ناکامی مانیں گی؟
میں سمجھتی ہوں ابھی جو کرتارپور والا جو معاملہ ہوا ہے بہت اچھا ہے, یہ ایک نئی بگننگ ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کو آمنے سامنے بات کرنے کی, بیکاز ابھی وہ ایک دوسرے کو گر رہے ہیں اور آپس میں جو ہیں وہ شیر کی طرح دھاڑے مار رہے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں, سمجھیں کہ ہمارے میں کیا چیزیں ہیں جو ملتی جلتی ہیں, کون سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں. کرتارپور کے بعد میں نے سنا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ وہ شاردا پیٹ جو کشمیر سے جاتا ہے اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں.
دونوں الگ الگ کیسز ہیں, ادھر سے ملیٹنٹس تو نہیں آتے ہیں ٹرین.
نہیں, آپ کو کیا, ابھی تک جو مظفر آباد راستہ ہمارا کھلا آج تک کوئی ملیٹنٹ نہیں آیا, ہمارا راولا کوٹ کھلا کوئی ملیٹنٹ نہیں آیا.
90s کے مقابلے میں کم آ رہے ہیں.
نہیں, جو راستے ہیں راستوں سے نہیں آ رہے ہیں, وہ تو پہاڑیاں اور جنگل کراس کر کے آ رہے ہیں. جو آپ کے راستے ہیں, جیسے مظفر آباد روڈ کھولا ہم نے, وہاں سے آج تک کوئی ملیٹنٹ نہیں آیا. ہم نے راولا کوٹ کھولا, کوئی ملیٹنٹ نہیں آیا. تو اگر آپ کو جموں کشمیر کو اس مخمصے سے نکالنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. آپ نے جموں کشمیر کو پنجرے میں بند کر کے رکھا ہے, اس کو ہوا دیجیے, اس کو نکلنے دیجیے, اس کے راستے کھول دیجیے. اور دونوں کشمیروں کو ہم بارڈر تو نہیں بدل سکتے, باؤنڈریز کو چینج نہیں کر سکتے, پر باؤنڈریز کو ختم تو کر سکتے ہیں, ان کو ڈیسیمیٹ تو کر سکتے ہیں.
یہ بتائیے کہ جو پتھر باز آپ نے ریہیبلیٹیٹ کیے, کیندریہ سرکار کا ہمیشہ سے الزام رہا ہے کہ ان کو اسپانسر کیا جاتا ہے, حوالہ کا پیسہ پاکستان سے آتا ہے اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. مکھیہ منتری رہی اتنے سالوں تک, کیا ایویڈنس ہے اس کا؟
نہیں, یہ تو کیندر کے پاس ہوگا ایویڈنس, میرے پاس تو اس قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو ہے پتھر باز جو ہیں وہ سارے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں پھر وہ پتھر مارتے ہیں. میرے پاس تو اس قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. حوالہ کا سارا سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ایجنسیز ہیں, وہ پتہ لگا سکتے ہیں.
ایجنسیز نے, این ڈی اے سرکار کا الزام نہیں ہے, اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی یو پی اے سرکار کے زمانے میں بھی کہ حوالہ کے پیسے سے.
تو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے پاس تو اتنی بڑی سرکار ہے.
آپ بھی تو مکھیہ منتری رہی تھی, آپ کو
نہیں. ہم تو یہ تو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو این آئی اے کے ذریعے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پکڑ کے لایا جن کا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا ملٹنسی سے, ان کو بھی پکڑ کے لایا.
یہ بتائیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ جو اپنا الائنس کیا 2016 کے بعد, میں کئی بار گیا ہوں, عام لوگوں سے گاؤں میں شہروں میں ملا ہوں, آپ سے بڑی ناراضگی ان کی تھی. آپ کی پارٹی کی چھوی اس سے خراب ہوئی؟
بالکل, بہت خراب ہو گئی. یہ تو بالکل, یہ تو جو ہم نے الائنس کیا, میں نے کہا نا میں سمجھتی ہوں کہ مفتی صاحب سے کے علاوہ کوئی بھی اسٹیٹس میں اتنا بڑا الائنس نہیں کر سکتا تھا. جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے اتنی, اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں دے سکتا جو قربانی ہم نے دی, پر دی لوگوں کے لیے.
پی ڈی پی نیتا اور جموں کشمیر کی پورو مکھیہ منتری محبوبہ مفتی سے بات کر رہے تھے بی بی سی سنواددتا زبیر احمد. آدیش کمار گپت اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں. آج وشو کپ ہاکی کے میدان میں مقابلوں میں کیا چل رہا ہے؟
جی سندیپ جی, فی الحال تو پول ڈی میں جو آخری پول میچ چل رہا ہے جہاں نیدرلینڈس اور پاکستان آمنے سامنے, تین بار کی چیمپئن نیدرلینڈس اور چار بار کی چیمپئن پاکستان, اور اس سمے فی الحال نیدرلینڈس نے 2-1 کی بڑھت لی ہوئی ہے. اور یہ مقابلہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اس میچ کی جو وجیتا ٹیم ہے وہ پھر بھارت کا مقابلہ کرے گی کوارٹر فائنل میں. تو کل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ کافی حد تک دشا اور دشا طے کر سکتا ہے. دراصل اس مقابلے کی جو ٹیم ہوگی وہ پھر کوارٹر فائنل میں پہنچنے کی اس کی امیدیں بن سکتی ہیں, کیونکہ دوسرے استھان پر رہتے ہوئے وہ کراس اوور کا مقابلہ کھیلے گی, شمع کیجیے. دوسری طرف اس سے پہلے مقابلے میں دو بار کی چیمپئن جرمنی اور جھجھارو ملیشیا آمنے سامنے تھی. دے دنادن گول والے اس مقابلے میں ملیشیا نے جرمنی کو 5-3 سے مات دی, اور ایک سمے تو جب چوتھا کوارٹر چل رہا تھا تب جرمنی کی ٹیم 4-3 سے آگے تھی. اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ مقابلہ کتنا کشمکش والا تھا. فی الحال تو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو کافی حد تک نیدرلینڈس کا مقابلہ کر رہی ہے کہاں تک اس مقابلے میں جا پاتی ہے, کیونکہ ورلڈ کپ میں اس بار کچھ اس طرح کے نیم ہیں کہ جو ٹیم پول میں سب سے زیادہ انک رکھے گی وہ سیدھے سیدھے کوارٹر فائنل میں جائے گی, لیکن اس کے بعد بھی موقع ہوگا دوسری ٹیم کو بھی کوارٹر فائنل میں پہنچنے کا.
اور کرکٹ کے میدان میں کیا حال چل ہے آج؟
کرکٹ کے میدان میں آسٹریلیا کے سامنے جیت کے لیے 323 رنوں کا لکشیہ ہے, اور آج کے دن کا جب کھیل سماپت ہوا تب اس کے 4 وکٹ 104 رن پر گر چکے تھے, اور ابھی بھی فی الحال آسٹریلیا کو جیت کے لیے 219 رنوں کی ضرورت ہے, جبکہ بھارت کو جیت کے لیے 6 وکٹ کی ضرورت ہے.
آدیش کمار گپت سے کھیل سماچار سننے کے بعد چلتے چلتے خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنتے ہیں آدرش راٹھوڑ سے.
بی بی سی سماچار. विश्व हिंदू परिषद ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाए जाने की मांग को लेकर एक रैली का आयोजन किया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो फ्रांस की राजनीति में दखल न दें। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में लड़ रहे गठबंधन की मदद रोके जाने का पक्षधर नहीं है। ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मंत्री स्टीव बार्कले ने दोहराया है कि संसद में मंगलवार को सरकार के ब्रेग्जिट समझौते पर मतदान होगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान संभाल रहे थे अजीत सारथी। अगला प्रसारण नमस्कार भारत हर दिन की तरह भारतीय समय अनुसार, समय जानते हैं आप, सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। शुभ रात्रि।